नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम डॉक्टर लुका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम डॉक्टर लुका की इस श्रृंखला के अंतर्गत कैंसर के विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत कर रहे हैं। आज हम रक्त कैंसर के विषय में देखेंगे, तो आइए सुने डॉक्टर लुका की ये वार्ता।
प्रिय मित्रों, आप सबको नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुनिया की आयु 75 वर्ष की थी। उसे 2 सप्ताह से खांसी थी। उसकी पुत्री उसे स्थानीय डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने परीक्षण किए, जिसमें एक रिपोर्ट असामान्य थी। डॉक्टर ने उसकी पुत्री से कहा कि उसके खून की जांच का उसकी खांसी से कोई संबंध नहीं था, परंतु सहवर्ती परीक्षण थे। परीक्षणों से पता चला कि मुनिया को एक प्रकार का रक्त कैंसर है। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि इस समय तो चिंता की कोई बात नहीं है, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसका कारण रक्त कैंसर के अतिरिक्त कुछ और होगा। मुनिया ने डॉक्टर से पूछा, इसके उपचार के लिए क्या दवाएं हैं? डॉक्टर ने कहा कि नहीं है, परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस रोग से मरने की संभावना बहुत कम है, चाहे यह रोग आजीवन लगा रहे, क्योंकि इससे बीमार होने में बहुत समय लगता है। संजीव 45 वर्षीय पुरुष था और स्वास्थ्य की चरम सीमा पर था। वह प्रतिदिन 30 मिनट दौड़ता भी था। एक दिन उसे थकान लगी और बुखार भी चढ़ गया। अगले दिन उसकी हालत अधिक बिगड़ने के कारण उसकी पत्नी उसे अस्पताल ले गई। खून की जांच करके डॉक्टर ने कहा कि उसे रक्त का कैंसर है और वह भी बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल जाकर उपचार करवाना है कि जीवित रहे। अगले दिन अस्पताल जाते समय उसका बुखार और अधिक बढ़ गया और उसे खांसी भी आने लगी। अगले दिन उसकी स्थिति बहुत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसे निमोनिया हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि उसे उग्र रक्त कैंसर है और ऐसे रोगी लक्षण दिखाई देने के कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। कुंदन एक 10 वर्षीय बालक था जो कुछ सप्ताह ही पूर्व पूर्ण रूप से स्वस्थ था, परंतु वह लगातार दुर्बल होता जा रहा था और उसे जुखाम हो गया। उसकी माता उसे अस्पताल ले गई कि डॉक्टर को दिखाए। वह क्यों दुर्बल होता जा रहा है और अब उसे जुखाम भी है? डॉक्टर ने उसके खून की जांच करके देखा कि किसी किसी रिपोर्ट में अनियमितता है। डॉक्टर ने संदेह व्यक्त किया कि उसे रक्त कैंसर हो सकता है और वो भी उग्र प्रकार का। डॉक्टर ने कहा कि यह कैंसर बच्चों में सामान्यता हो जाता है, परंतु एक अच्छी बात यह है कि उपचार से इसका उन्मूलन हो सकता है। अब यहाँ रक्त कैंसर के 3 रोगी हैं और तीनों प्रकार की प्रवृत्ति भिन्न है। रक्त कैंसर क्या है, यह कैसे होता है, वह प्रत्येक रोगी में अलग अलग कैसे है? मित्रों, पहली बात है ये रक्त का कैंसर है। दूसरी बात, जैसा देखा गया है कि रक्त कैंसर किसी भी आयु में हो सकता है। तीसरी बात, जैसा इन रोगियों में देखा गया है कि रक्त कैंसर अलग अलग रोगियों में अलग अलग लक्षण प्रकट करता है और अलग अलग प्रकार के प्रभाव डालता है। आइए हम रक्त कैंसर के विषय चर्चा करेंगे। जब किसी के रक्त में रक्त कोशिकाएं उचित रूप से कार्य नहीं करती हैं तो रक्त कैंसर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके अनेकों कारण हैं। ये कोशिकाएं जो उचित रूप से काम करना बंद कर देती हैं, वे सफ़ेद कोशिकाएं हैं। ये सफ़ेद कोशिकाएं सबके रक्त में उपस्थित होती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है शरीर की संक्रमण से रक्षा करना। उनके उचित रूप से काम न करने के कारण संक्रमण से रक्षा करने की शारीरिक क्षमता घट जाती है। इसलिए रक्त कैंसर के सफ़ेद रक्त कोशिकाएं निष्ठावान नहीं रह जाती हैं। मित्रों, रक्त कैंसर कैसे होता है, इसके अनेक कारण हैं, जिनमें वातावरण और काम करने के स्थान में उपस्थित विष और रसायन, अनुवांशिक कारण भी हैं, कुछ दवाएं, विकिरणों की अधिकता और अन्य छोटे मोटे कारण। मुनिया के संबंध में कैंसर आयु संबंधित था। कुछ प्रकार के रक्त कैंसर के कारणों की व्याख्या के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है, परंतु सब रोगियों में एक बात आम है, कैंसर के कारण उनके जीवन इस पृथ्वी पर सदा के लिए बदल गए थे। उनके परिवार और उनके अपने मन में कैंसर संबंधित अनेक प्रश्न उठते होंगे। उन पर खर्चा बढ़ेगा, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर रोग के कारण उत्पन्न कष्ट एवं पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। क्या इन प्रश्नों के उचित उत्तर हैं? मित्रों, मैं हाँ कहूँगा। बाइबल में इन प्रश्नों के अनेक उचित उत्तर हैं। संभवतः कष्टों के बारे में बाइबल हजारों वर्षों से संसार के लिए संदेश देती आई है। यह मनुष्य के लिए परमेश्वर का पत्र है। जो उनके जीवन आचरण के लिए परमेश्वर की इच्छा प्रकट करती है। वह यह भी बताती है कि परमेश्वर को कैसे जाने। मित्रों, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो दूर है, जिसे हम जान नहीं सकते हैं। वह तो हमारे निकट है और हम उसे जान सकते हैं। बाइबल अनेक पुस्तकों का संग्रह है। डॉक्टर लूक ने भी एक पुस्तक लिखी है और परमेश्वर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने सन 70 में एक पुस्तक लिखी जिसे प्रेरितों का काम शीर्षक दिया गया। इसमें आरंभिक कलीसिया के कामों का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर लूक ने लिखा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें। कदाचित उसे टटोल कर पाएं तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितनों कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। मित्रों, यह अंश हमें प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय 24 से 28 में मिलता है। डॉक्टर लूक का यह चुनौती भरा गद्यांश है। इसमें कई बातें कही गई हैं। पहली बात, परमेश्वर ने जगत की, समय की और सब जातियों की रचना की। दूसरी बात, परमेश्वर ने यह सब इसलिए किया कि मनुष्य परमेश्वर की खोज करे। वह हमसे दूर नहीं है, हम उसके जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। मित्रों, सच तो यह है कि हम उसकी संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। सचमुच कैसी महत्वपूर्ण और अद्भुत बात है ये, और कैसी महान आशा। हम वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं। उसने हमें अपने उद्देश्य निमित्त सृजा है और हमें रहने के लिए पृथ्वी और समय दिया। यह मानव जाति के लिए एक महान आशा है। मित्रों, अब यहाँ पे एक प्रश्न यह है कि मनुष्य जीवन और समय के वरदान तथा परमेश्वर की संतान होने के सत्य के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दिखाता है। मित्रों, डॉक्टर लूक इसी विषय पर चर्चा करते हैं। प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय 29 से 31 में इस प्रकार लिखा है, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित की है। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और मांस एवं लहू से बने हैं, तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे हाथों से बना कोई आकार हो सकता है। मित्रों, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम सृजनहार हैं और परमेश्वर हमारी हाथों की रचना है। परंतु यथार्थ में तो इसका विपरीत है। हम परमेश्वर के हाथों की रचना हैं और वह हमारा सृजनहार है। डॉक्टर लूक कहते हैं कि परमेश्वर ने पूर्व काल में इस अज्ञान को अनदेखा किया, परंतु अब वह इसे अनदेखा नहीं करेगा। वह निवेदन नहीं कर रहा है, वह मनुष्यों को हर जगह मन फिराव की आज्ञा दे रहा है। मन फिराव का अर्थ क्या है? मित्रों, मैं आपको बता दूं, मन फिराव का अर्थ है हम जिस दिशा में चल रहे हैं उससे पीछे मुड़ जाएं और परमेश्वर के पास लौट आएं। परमेश्वर कहता है कि उसने भविष्य में एक दिन निश्चित किया है जब वह संसार का न्याय करेगा। यह न्याय उसके द्वारा नियुक्त एक मनुष्य करेगा। नियुक्त किया गया यह न्यायी कौन है? उसके न्यायी होने का प्रमाण है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है। मित्रों, यह मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है जो न्याय करेगा। इससे पूर्व कि हम प्रभु यीशु के बारे में अधिक चर्चा करें, हम रक्त कैंसर पर अपनी परिचर्चा को पूरा करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि रक्त कैंसर का उपचार कैसे करें। मित्रों, रक्त कैंसर के प्रत्येक रोगी के साथ उपचार भी अलग अलग है, परंतु सबको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो सब रोगियों के लिए अलग अलग हैं। उनकी मात्रा, गौण प्रभाव और उपचार काल भी प्रत्येक रक्त कैंसर के लिए अलग अलग है। उदाहरण के तौर पे, मुनिया जो आयु में अधिक है उसे कम दवाइयां या केवल एक ही दवाई आजीवन खानी पड़ेगी। इस दवाई के गौण प्रभाव भी कम हैं और प्रभाव बहुत अच्छा है। अब संजीव, जिसे उग्र कैंसर था, उसे दवाइयों की बहुत अधिक मात्रा खानी होगी और तुरंत उपचार आरंभ करना होगा। ऐसा उपचार अनेक गौण प्रभाव उत्पन्न करता है, परंतु मरने से बचने के लिए उसे ये दवाएं खानी ही होंगी। इसलिए रक्त कैंसर का उपचार आयु और कैंसर की प्रकृति पर निर्भर करता है। सौभाग्य से कुंदन जैसे युवाओं के लिए रोग मुक्ति तो संभव है, यह एक शुभ समाचार है। मुनिया जैसे वृद्ध जन रक्त कैंसर से मरेंगे नहीं, क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। मित्रों, कुछ अन्य बातें भी हैं, जैसे खून चढ़ाना और दवाइयों का गौण प्रभाव, जिसका सामना इन रोगियों को करना होगा। यह जरूरी है और रोगियों को इनसे राहत चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही। कुछ बच्चे रक्त कैंसर से उभर नहीं पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है, जो उनके परिवार के लिए वरन बच्चों के लिए भी दुख का समय होता है। मित्रों, हम परमेश्वर को कैसे जानें, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। हम उसके मार्गों में चलकर, उसके पास आकर उसे जान सकते हैं। यदि हम अपने अपने मार्ग पर चलें तो हम परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, और अपने मार्गों पर चलकर हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यदि कैंसर रोगी अपनी इच्छा से चले और डॉक्टर के निर्देशों का पालन ना करे, तो वह कभी स्वस्थ नहीं होगा। डॉक्टर लूक द्वारा लिखी बाइबल की पुस्तक में कहा गया है कि हम सब ने अज्ञानतावश अपना मार्ग चुन लिया है। इसी बात को 65 में डॉक्टर लूक के सहकर्मी पॉलुस ने रोम के विश्वासियों को पत्र में कुछ भिन्न रूप से लिखा था। रोमियो 3 अध्याय और उसके 23 पद में उन्होंने लिखा, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया है। मित्रों, वो उसी पुस्तक के अध्याय 6 और 23 पद में कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमारे पाप का परिणाम तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर ने, मित्रों, हमें प्रभु यीशु में एक अनमोल वरदान दिया है जो अनंत जीवन है, और प्रभु यीशु को हमारे पापों का उद्धारकर्ता ग्रहण करते ही आरंभ हो जाता है। मित्रों, पौलुस अपनी परिचर्चा में आगे कहता है, जो कि हमें रोमियो उसके 5 अध्याय 6 से 8 में मिलता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम असमर्थ थे और परमेश्वर से दूर विपरीत दिशा में चल रहे थे, अज्ञानी थे, तभी प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया। मित्रों, वह हमारे स्थान पर मर गया कि हमको पाप का दंड ना भोगना पड़े। कोई किसी के लिए ऐसा क्यों करेगा, परंतु प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए मर गया। यीशु वही न्यायी बनेगा जिसके लिए डॉक्टर लूक ने पहले कहा था। वह हमारे कुकर्मों के लिए हमारे स्थान पर मर गया। हमारे मरने की अपेक्षा हमें उसके द्वारा नया जीवन प्राप्त हुआ, और वो जीवन अनंत जीवन है। मित्रों, अब आप पूछेंगे कि आप प्रभु यीशु को कैसे जानेंगे कि आपको भी यह अनंत जीवन प्राप्त हो। मित्रों, एक मार्ग है जो बहुत आसान है। उसमें आपको ना तो पैसा खर्च करना पड़ेगा और ना ही परिश्रम करना पड़ेगा। यह अनमोल है। रोमियो उसके 10वें अध्याय और 9-10 में पौलुस बताते हैं कि हमें क्या करना है। वहां पे इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मित्रों, यदि हम यह अंगीकार करें कि प्रभु यीशु जगत का प्रभु है, कि उसने हमें बनाया और हमें संभालता है और हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, और अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो हम अनंत काल के लिए पापों से बचाए जाएंगे। मित्रों, यहाँ आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना है। आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी है। मैं आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मर गए और इस प्रकार जगत के प्रभु हैं। मैं मानता हूँ कि मरने के बाद आपको कब्र में रखा गया और आप फिर जी उठे कि पाप और मृत्यु पर आपकी जय प्रकट हो। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपने ये प्रार्थना की है और इस पर आप विश्वास करते हैं तो आपको बधाई हो, आप सदा के लिए परमेश्वर की संतान हो गए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ मिला होगा। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0995882041। याद रहे 0995882014। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।